ओम शांति। आप सभी शिवपुत्र तपस्वी गणेशों का, विघ्नहर्ताओं का, सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करने वालों का ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गणेश चतुर्थी का आज पावन दिवस और हमारी भट्टी का भी सुंदर शुरुआत, तो गणेश चतुर्थी के भी आप सभी को दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। यादगार हमारा विशेष इस रूप में कि हम सब गहन तपस्या करके विश्व को सकाश देने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले, और उसी तपस्या के लिए बाबा ने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है। संसार में लोग कहते हैं आप आए बाहर आए, तो आप आए बाहर तो आए, लेकिन आप आए बरसात आए। इसलिए जोरदार ताली अपने लिए जरूर बजा लें जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता मधुबन में थी। तो आप आए पुण्य आत्माओं के आगमन से, प्रकृति भी प्रसन्न है। तो मधुबन निवासी आदरणीय दीदी की ओर से, सभी ज्ञान सरोवर निवासियों की ओर से आप सबका बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इससे पूर्व कि मैं शुरुआत करूं, निवेदन करूंगा कि हम सब तपस्या में आए हैं, कोरोना काल भी चल रहा है, तो इसलिए एक सोफे पे केवल दो बहनें बैठें, थोड़ा दूर दूर बैठें, तीन जो बैठे हैं वो थोड़ा अलग हो जाएं, एक एक सीट का थोड़ा सा गैप कर दें, दो बगल में ना बैठें, एक एक कुर्सी छोड़ करके बैठें, और मास्क पूरी तरह अपने नाक में कवर करके रखें, ठीक है ना। कोरोना काल में हम सबको एक दूसरे को मदद करनी है, सहयोग देना है, और वैसे भी हम तपस्या के लिए आए हैं, विघ्न विनाश करने के लिए आए हैं, तो विघ्न स्वरूप नहीं लेकिन विघ्न विनाश करने वाले बने। यहां निवेदन करूंगा एक बहन पीछे चली जाए, केवल दो ही बैठे। भाइयों और बहनों सबसे निवेदन है कि केवल एक सोफे पे दो और एक एक छोड़ करके। अब मैं निवेदन करता हूं आप सबके हृदय से स्वागत और अभिनंदन के लिए मधुर वाणी ग्रुप को, जो हमेशा ही बहुत दिल से प्यार से घर में आए हुए हमारे, आप घर के ही बच्चे हैं लेकिन अतिथि स्वरूप हैं, तो आप सबके अभिनंदन स्वागत के लिए हमारे नितिन भाई और बितिन भाई आ रहे हैं। नितिन भाई विशेष आप जानते हैं, बहुत सारे हमारे कैसेट्स में आपके गीत संगीत हैं। बितिन भाई भी बहुत विशेष आत्मा है, जो भी आप डेकोरेशन ज्ञान सरोवर में देखते हैं आपकी विशेष भूमिका उसमें रहती है, और साथ ही 3D जो शो हमारे यहाँ है उसके आप निमित्त हैं। बहुत सुंदर गीत की रचना करते हैं हमारे दोनों भाई, स्वरचित गीत, और दिल से सभी हमारे आए हुए भाई बहनों का अभिनंदन करते हैं। तो अनुरोध करता हूँ स्वागत गीत नितिन भाई और बितिन भाई हम सबके बीच रखेंगे, और इस स्वागत में हम भी तालियों से अपना सहयोग देंगे।
ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आदि वाले दिन बाबा फिर से हमें दिखाते हैं, 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में कराते हैं। बज रहे विनाश के है उधर नगाड़े, दिख रहे इधर है नवयुग के नजारे। अग्रिम दल के रत्नों का तप रंग लाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर्मुख हो आओ हम योग का करे प्रयोग, मनसा सेवा सकाश में मिलके करे सहयोग। शांत और एकांत मिला सबका ये मौका है, उड़ो पंछियों उड़ने से अब किसने रोका है। वाह बाबा वाह ड्रामा दिल ने अब गाया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ऐसी भट्टी हो जो यादगार बन जाए, और भट्टी की कोई सरकार ना रह जाए। योग भट्टी की ज्वाला आओ ऐसी जलाए, संसार से पुराने संस्कार सब जल जाए। निर्विघ्न रहने करने का मौसम आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। ज्ञान सरोवर तप करने गुलदस्ता आया है, स्वर्णिम भट्टी का स्वर्णिम अवसर ये पाया है। स्वागत करते रत्नों का बाबा मधुबन वाले, बाबा संग स्वागत करते हम मधुबन वाले शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों भाइयों का जिन्होंने कितने दिल से प्यार से हम सबका अभिनंदन किया स्वागत किया। एक बार फिर से जोरदार तालियों से हम उनका भी शुक्रिया करते हैं अपना भी स्वागत करते हैं। और मंच कितना सुंदर सजा हुआ है आदरणीय दीदी हमारी बड़ी बहनें सभी हैं तो एक हाथ की ताली से हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने सुंदर और अमूल्य समय से समय निकालकर हम सबकी श्रेष्ठ पालना के लिए हम सबको बल देने के लिए प्रेरित करने के लिए आज यहाँ इस सभा में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। उनके वाइब्रेशंस लेते हुए हम सब योग की गहराई की ओर आगे बढ़ेंगे। और आइए अब चलते हैं एक ऐसी विभूति की ओर जो पूरी ही भट्टी को बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करते हैं। आप सब आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, आपके ज्ञान योग से कैसी पालना की जाए ताकि आप सब इतनी भरपूर हो जाएं, इतनी भरपूर हो जाएं कि सारा ही वर्ष जब तक नेक्स्ट टाइम आए तब तक पूरी तरह माया से मुक्त रहें, शक्तिशाली रहें, अचल अडोल रहें। तो ऐसी सुंदर भट्टी की प्लानिंग करने के लिए और साथ ही ज्ञान सरोवर के प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने वाली, बाल्यकाल से ही जिन्हें बाबा ने अपनी गोद में ले लिया, अपनी एजुकेशन इंजीनियरिंग की कंप्लीट करते ही आप बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए, एजुकेशन विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत अच्छी वक्ता और सभी को अपने नाम के अनुरूप सुमन बनाने वाली हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी, जो अपने नाम के अनुसार हम सबको हमेशा प्रेरित करती हैं कि हम सब भी अपने मन को सुंदर श्रेष्ठ सुमन बना करके रखें। वो कहते हैं ना, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। तो ऐसे ही हम सब की सुमन बहन जी ज्ञान सरोवर में होने वाली भट्टी की शुरुआत से लेके अंत तक फूल की तरह सुमन की तरह खिली रहती हैं और अपनी मुस्कान के साथ सुंदर खुशबू बिखेरती रहती हैं। अनुरोध करूंगा कि इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सबके सम्मुख रखें आदरणीय बहन जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो विघ्नेश्वर है, विघ्नेश्वर के अति प्रिय संतान, आप सभी भाई बहने यहाँ पधारे हैं भट्टी के लक्ष्य से। आप सभी भाई बहनों का, बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चों का, बाबा के घर में ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर के आप सभी यहाँ पधारे हैं और इस मौके का हम सभी मिलकर के पूरा पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। संगम युग बहुत सुंदर समय है। अपने झोली बाबा के जो रत्न है, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का के जो रत्न है झोली, उन चीजों से भरने का समय है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का समय है। पूरे कल्प के लिए बाबा का प्यार बटोरने का समय है। तो ऐसे समय में हम सभी हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। बाबा ने हम सभी को चुना, अपना बच्चा बनाया और स्वर्ग के लायक हम सभी को बना रहे हैं। हम न केवल भाग्यशाली हैं, लेकिन सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। भाग्य खींचने का कलम बाबा ने हमें हमारे हाथ में दिया है, तो जितना लंबा खींचना चाहे वो हम खींच सकते हैं, बाबा ने वो छूट दिया है। तो वो भी संगम काल का भी समय है, लेकिन विघ्न विनाशक का भी त्योहार चल रहा है, हम सभी के लिए बहुत सुंदर लक्ष्य भी है। अपने जीवन में कोई भी विघ्न ना आए, जो भी विघ्न है वो सब कुछ यहाँ खत्म हो जाए इन 3 दिनों में। ऐसे ज्वालामुखी योग हम सभी मिल करके करें, हर एक के जीवन में जो भी विघ्न है वो आज ही अभी ही यहाँ ही खत्म करके जाए, जाने से पहले वो पूर्णतः खत्म हो जाए। उस रीति से हम सभी मिलकर के योग करेंगे और साथ साथ गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहते हैं। सिद्धि ऐसे प्राप्त करें अपने जीवन में, जो भी संकल्प हम करें वो सिद्ध हो जाए, ऐसी शक्ति आत्मा के अंदर मन के अंदर भरे यहाँ बैठ करके। क्योंकि एक तो वातावरण इतना सुंदर है और सालों से यहाँ जो तपस्या हुई है उस तपस्या का भी मदद है हम सभी को, जो भी आप संकल्प करेंगे तो जरूर सिद्ध होगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, लक्ष्य अगर रखना है तो ऊंचा लक्ष्य रखें, कोई ऐसे छोटे मोटे लक्ष्य ना रखें, है ना। छोटे मोटे लक्ष्य भक्ति मार्ग में क्या कहते थे, कौन सा लक्ष्य रखते थे, क्या मांगते थे भक्ति मार्ग में भगवान से, हमें बच्चे हो जाए या फिर ये धन की जो कमी है वो खत्म हो जाए, या बीमार अगर कोई है तो उसका स्वस्थ हो जाए। छोटी मोटी जो प्राप्तियां हैं वो मांगते थे, अल्पकाल की प्राप्तियां हम मांगते थे, लेकिन अभी सर्वशक्तिमान बाप खुद साथ में है। हम भक्ति के संस्कार छोड़ दें और हमेशा के लिए जो अनादि अविनाशी प्राप्ति है वो हम यहाँ प्राप्त करके जाएं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर भगवान आ जाए तो छोटे मोटे अगर मांगते हैं तो वो क्या, फिर कुछ है ही नहीं ना। तो इसीलिए बड़ी चीज मांगना भी नहीं है, हक से उस चीज को अनुभव करने की बात है। तो लेकिन अनुभव करना है, प्राप्ति करनी है, तो पात्र को भी ठीक करना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही होगा। अगर बर्तन खराब है, बर्तन साफ नहीं है, तो शेरनी की दूध वहां ठहरती नहीं है। ऐसे ही बाबा की शक्तियां, बाबा से जो भी प्राप्तियां अगर हमें करना है, जो यहाँ बर्तन है आत्मरूपी बर्तन, उसको हमें पहले उसको साफ करना पड़ेगा, उसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा, उसको लायक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के जो रत्न हमें मिलते हैं वो ठहरेगा, नहीं तो फिर बह जाएगा। बह जाएगा माना सुनेंगे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुन करके, हाँ भट्टी कैसी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया ज्ञान सरोवर में भट्टी, बहुत आनंद आया, बहुत अनुभव अच्छा लगा, स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ। लेकिन फिर 3 दिन के बाद कुछ परिवर्तन आया जीवन में, संस्कारों में कुछ परिवर्तन आया, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने से नहीं होगा ना। बाबा हमेशा कहते हैं अच्छा बन के दिखाओ, तो ये लक्ष्य रखे हम अच्छा बन करके दिखाएं। संस्कार कोई भी ऐसा संस्कार चूज करे, बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं उस संस्कारों पर विजय पाने के लिए, उस संस्कार पर आज यहाँ बाबा के घर में दान दे दीजिए। दान देंगे तो वो जरूर वो संस्कार परिवर्तन होगा और उस जगह में क्या भरेंगे, शक्तियां भरेंगे, क्या भरेंगे, वो भी आपको भर के जाना है। तो भरने के लिए जो बर्तन है उसको स्वच्छ कैसे करेंगे, है ना? तो स्वच्छ करने के लिए बहुत जरूरी है बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, क्योंकि जब तक हम दुनिया के साथ, लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आंतरिक जो जगत है, मन को स्वच्छ हम कर नहीं कर सकते हैं, रियलाइज नहीं कर सकते हैं, अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। तो इसीलिए डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है कि बहुत समय के बाद आप सभी घर से निकले हैं तो समझते होंगे हाँ मधुबन गए हैं, सबके साथ मिलना जुलना हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो तो अच्छी बात है, ब्राह्मण जीवन है, संगम काल है, तो ब्राह्मणों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा कल्प भी तो वही करते आए हैं, मिलना जुलना, खाना पीना, सभी मौज मस्ती वो सब कुछ करते आए हैं, लेकिन अभी का समय है बैठ करके तपस्या करने का। पिकनिक के लिए आए हैं या तपस्या करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं या एक जगह पर बैठ करके ज्वालामुखी योग करने के लिए आए हैं, है ना? घूमे फिरे हैं बहुत, है ना? अभी समय है एक जगह पर बैठ करके तपस्या करने की, अपने आप को परिवर्तन करने की, क्योंकि आने वाला समय बहुत नजारा, अभी तो दो सालों में तो बहुत नजारे तो दिखा दिया ड्रामा ने, लेकिन आने वाला समय भी क्या होगा हम सभी एक्सपेक्ट कर सकते क्या होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को उसके लिए तैयार करने की जरूरत है। तैयार करने के लिए जो डिस्कनेक्ट करने की बात है तो उसके लिए तीन प्रकार के मौन की आवश्यकता है। एक है मुख का मौन, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति नष्ट होता है बोलने से, है ना? जितना कम बोले उतना अच्छा है, इसीलिए लक्ष्य रखे आज रात को जिनसे भी बात करना है, बात करने के बाद फिर कल सवेरे से आप सभी मौन में रहें। जितना मौन में रहेंगे उतना आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएगी, ग्रहण शक्ति बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए बहुत लाभ मिलेगा आप सभी को मुख का मौन। दूसरा है मन का मौन। मुख का मौन बहुत लोग रखते हैं लेकिन फिर मन भटकता रहता है, मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलता रहता है, नेगेटिव विचार चलता रहता है। नहीं, मन का भी मौन, जो भी यहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसको उसका पूरा पूरा आनंद लेना है। ये भी संकल्प नहीं कि इस स्पीकर के बजाय ये स्पीकर होता, ये फिर ये व्यक्ति का क्लास होता तो अच्छा, ये भी संकल्प नहीं। जो भी प्रोग्राम हो रहा है बाबा उनके द्वारा आप सभी को बहुत कुछ देने वाले हैं, है ना? कब मिलेगा हम सभी को? जब हमारी बुद्धि प्लेन होगा, कोई भी संकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं, प्लेन बुद्धि होगा तो बाबा जरूर उस बुद्धि के अंदर बहुत शक्ति, वो ताकत जरूर भरेंगे। तो इसीलिए मन का भी मौन, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, देखते हुए भी न देखने का अभ्यास करने की जरूरत है। बड़ा संगठन है, बहुत कुछ दिखेगा भी, लेकिन फिर देखते हुए न देखने का अभ्यास हमें करना है। और तीसरा मौन है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो है मोबाइल का मौन। तीन एम का मौन है ना, मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। मोबाइल का मौन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के साथ कनेक्ट हुए माना दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए, फिर बाहर मुक्ता में आए तो अंतर मुक्ता के गुफा में फिर आप नहीं बैठ सकते हैं लंबे काल तक। तो इसीलिए जितना हो सके आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज रात सोने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ, और जिनको भी बोलना है या मैसेज करना है तो बोलिए मंगलवार, जो 14 तारीख सुबह जिनसे भी बात करना है मंगलवार सुबह आपसे बात होगी। तो वो 3 दिन अगर आप 3 चीज का मौन रखेंगे तो जरूर आप सभी को बहुत आनंद आएगा, बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे और बहुत सारी शक्तियां गुण आप अपने आत्मा के अंदर भर करके जा सकते हैं। और प्रोग्राम्स भी बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, क्लासेस भी बहुत महारतियों के क्लासेस है, गणपति का भी त्योहार मनाएंगे अलौकिक रीति से। हम त्योहार मनाएंगे लेकिन लक्ष्य भी उसके साथ साथ, क्योंकि अलौकिक रीति से जब हम मना रहे हैं तो उस रीति से विघ्न विनाश, अपने जीवन के विघ्न जो है वो विनाश करके सिद्धि स्वरूप बनने का लक्ष्य लेकर के 3 दिन हम सभी मिलकर के तपस्या करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी आपका। तो जो 3 एम आपको मिले हैं कौन कौन करेगा ये जरा हाथ तो उठा दें। हाँ बहन जी देखें, सभी दिल से आपकी बात मानेंगे और सचमुच ये हमारे अपने हित के लिए है, कल्याण के लिए है, जीवन भर बोलना है। लेकिन ये 3 दिन एक चैलेंज है, हमेशा बहन जी एक बात कहती हैं हर भट्टी में, आज उन्होंने नहीं कहा, ये चैलेंज है आपके लिए है। तो ये चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है जरा हाथ उठाएं। चैलेंज बहन जी देखिए, सबने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है राइट। हमारी कल्याण सिद्धि स्वरूप भट्टी है, विघ्न विनाशक भट्टी है। तो अपने विघ्न, संसार के विघ्न को नष्ट करना और सिद्धि स्वरूप बनना तभी संभव है जब ऐसी गहन तपस्या हो, साधना हो। और ये हॉल इतना महत्वपूर्ण हॉल है, इस हॉल में बाबा आए हुए हैं, अव्यक्त बाप दादा। तो इस हॉल में जब भी आए बाबा को इमर्ज कर लीजिएगा, यहाँ के कण कण में बाबा के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। और बाबा ने वरदान दिया है कि यहाँ जो भी आएगा ज्ञान सरोवर में, भले साधारण रूप में आएगा लेकिन फरिश्ते स्थिति का अनुभव करके जाएगा। तो ये कितने सुंदर वरदान है बाबा के, इन्हें अपने अंतर मन में संजोते हुए हम 3 दिन बहुत गहन तपस्या भट्टी करके भरपूर होकर जाएं, ऐसा ही संकल्प रखेंगे। शुक्रिया बहन जी। अब मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली छज्जूपुर से हमारे बीच आदरणीय लक्ष्मी बहन जी हैं, एक बड़ा ग्रुप छज्जूपुर से आया हुआ है। दिल्ली में आप सेवारत 1974 में बाबा का ज्ञान मिला और एक साल में ही 1975 में आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और दिल्ली में रहते हुए वहाँ दैवी राजधानी बनाने के निमित्त हैं और अपनी पालना के द्वारा सभी आत्माओं में ज्ञान योग का सुंदर बल भरती हैं। अनुरोध करूंगा भट्टी के लिए शुभकामनाएं आदरणीय लक्ष्मी बहन जी हम सबको प्रदान करेंगी।
ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम तो बाप दादा को हम सभी शुक्रिया माने कि इतना सुंदर मौका बहुत दिनों की तपस्या के बाद मिला है और उसको हम सभी तहे दिल से स्वीकार करके और जो लक्ष्य हमें मिला उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। तो अपनी दीदी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा मौका हमें दिया जो हम सभी अपने ही पुराने संस्कारों का, और दिन भी बहुत अच्छा है विघ्न विनाशक, तो अपने जो भी पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम संपन्न बन चुके हैं, हर एक के साथ कुछ न कुछ छोटे बड़े संस्कार होते ही हैं, उसको यहाँ हम सभी इस भट्टी में संपूर्ण आहुति डाल के जाएंगे ताकि आगे जो अपना जो स्वर्ग आने वाला है तो उसमें हमारा जीवन सबसे अच्छे, बाबा कहते हैं ना कि राजा बनना है तो वो लक्ष्य हम सभी प्राप्त करेंगे अपने इंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर हम राज्य करके यहाँ से जाएंगे। संपूर्ण आहुति, भट्टी माना ही आहुति डालना, तो पक के जो भी थोड़ा बहुत कच्चे पक्के रह गए हैं उसको भी हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से खत्म करके संपूर्ण बन करके जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
आपके दिल की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया दे दें। राजधानी से सभी आए हैं, राजा बच्चे आए हैं बाबा के, हा? और भविष्य में भी राजा बनने वाले, तो वर्तमान के भी राजा और भविष्य के भी ऐसे राजा बच्चे हैं। तो राजाई ऐसे ही तो प्राप्त नहीं होती, सचमुच गहन तप और साथ ही दीदी ने जो प्रेरणा दी वो हमें जरूर करना है। अब मैं आदरणीय राजश्री बहन जी से अनुरोध करूंगा, ईस्ट पटेल नगर से आप हमारे बीच हैं, आसपास के सेवा केंद्रों का भी सुंदर संचालन करती हैं, बाल्यकाल से ही बाबा के घर में हैं सपरिवार और पिछले 28 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। तो अनुरोध करता हूं अपनी शुभकामनाएं राजश्री बहन जी भी हम सबके बीच रखेंगे।
ओम शांति। सर्वप्रथम आदरणीय निर्मला दीदी जी और मंच पर उपस्थित हमारे अनुभव वक्ताएं, आज हम सभी बहुत सुंदर दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा अर्चना भले बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां सुशोभित करके रखी गई हैं। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ स्थानों पे बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्तियां देखी, संकल्प भी आया कि एक मूर्ति हम ले जाएं। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि कोविड के चलते हुए जो खुशी, उमंग, उत्साह ये सब हम सेलिब्रेट करते थे, लेकिन ये सब कुछ मना हो गया। तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि धीरे धीरे ये रीति रस्म रिवाज बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन आत्माओं में खुशी, उमंग, उत्साह बनाने वाले आप बच्चे हो, तो हम कैसे उन भक्ति मार्ग वाली आत्माओं के जीवन के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह और उनकी मन की जो संकल्प है, मन के जो विचार हैं, उनको हम कैसे पूर्ण करें। तो उसके लिए बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं कि तुम बच्चों को सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है, तभी आप उनके संकल्पों को, उनकी स्थिति को पावरफुल बना सकेंगे। तो बहुत भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे हैं और विशेष रूप से हमारा इतना सुंदर भाग्य बनाने का और इतना सुंदर मौका देने वाली हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी हैं कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर चांस दिया और आज हम सब इतनी संख्या में एकत्रित होकर के इतना सुंदर योग, तपस्या और मन का मौन, इसका हम सुंदर रीति से अनुभव करेंगे और औरों को भी कराएंगे। तो पहला हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि किस तरीके से, जैसे हम सब ने, दीदी ने, सुमन बहन ने किस तरीके से एक एक शुभ भावना की, शुभ कामना की लकड़ियां हम सबको यहाँ पर इकट्ठी करके दी है, और हम अपने बाबा के योग की, लगन की, अग्नि जलाएं, जिसमें हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, बीती हुई बातें या कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर कुछ न कुछ बातें हैं, तो आज इस ज्ञान सरोवर की भट्टी में हम जैसे भट्टी के अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। तो आज हम इस ज्ञान सरोवर में जहाँ पर हमारी महान दीदी, जिनकी स्थिति को जब से मैं देखती हूँ, हमेशा मैं रोज मुरली दीदी की देखती हूँ, एकदम जैसा आपका नाम है, एकदम निर्मल मन वाणी कर्म और स्थिति आपकी देखो, अचल अडोल और एक रस। तो मैं हमेशा आपसे बहुत प्रेरणाएं लेती हूँ। बाबा तो है ही है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी आदरणीय दीदी हमारे लिए आधार स्तंभ है, और उसके लिए उनके पीछे मैंने देखा आपकी बहुत गहन डीप तपस्या है, जो हमें अपने आदरणीय दीदी से सीखना है, लेकर के जाना है कि हम भी अपने जीवन को आपके समान बनाएं। जो मुझे बाप दादा के एक शब्द याद है, तो मैंने एक बार पढ़ा था कि बाबा ने कहा था कि आप वो बच्ची हो कि जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो बाबा आपको बिठाएगा। तो इतना सुनते ही मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि देखो भगवान ने आपके अंदर कितनी विशेषताएं भरी, तो क्यों ना हम अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं जो भगवान भी हमारे जीवन को देख करके खुश हो जाएं। तो इसीलिए हमने दीदी जी को भट्टी के लिए बोला, तो दीदी ने एक सेकंड में यस किया और दीदी जी के संकल्प से हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। तो बाप दादा की प्रेरणाएं और आदरणीय दीदी जी की प्रेरणाएं और हमारे ज्ञान सरोवर निवासी भाई बहनों का अथक मेहनत, अथक तपस्या, परिश्रम और हमारे प्रति जो सभी की इतनी जिगरी प्यार है, तो उसको हम इस भट्टी में परिवर्तन करके दिखाएंगे। उसको हम सभी सिद्धि स्वरूप विघ्न विनाशक बनकर के हम दिखाएंगे, और यही संकल्प करके जाएं कि अगर हम जिस भी सेवा स्थान पे जाएं, अपने घर पे जाएं, कि तो उनको भी हमारा परिवर्तन महसूस होने लगे। तीसरी बात कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि हम अपने घर गृहस्थ में रहते हैं तो हम बिजी होते हैं, तो कई बातें बाबा की मुरली के अंदर आती हैं, बच्चे चार्ट रखो, बाबा से रूह रिहान करो, मिलन मनाओ, गहराई में जाओ, डीप रियलाइजेशन करो, तो ये सब हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास ये तीन दिन नहीं है, लेकिन जीवन के, हमारी जीवन के ये तीन दिन बहुत मूल्यवान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन तीन दिनों के अंदर हम जो चाहे सो इस ज्ञान सरोवर में से हम झोलियां भर भर के, अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर भर के ले जाएंगे और दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को अनुभव कराएंगे। हमारी भट्टी से उनको भी प्रेरणा मिले कि नेक्स्ट टाइम भट्टी हो तो सबसे पहले हम जाएंगे, ऐसा हम बन करके दिखाएंगे। ओम शांति।
जरूर सभी ऐसा ही सुंदर संकल्प लेकर आए हैं कि हम ऐसा ही बनेंगे, कुछ अब करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। हमारे बड़ों ने, बाबा ने अब तक हम पर इतना परिश्रम किया है, इतनी पालना दी है, तो उसका रिटर्न तो हम सबको जरूर देना ही है। देंगे ना, सभी देंगे ना रिटर्न? इसी भाव से, इसी उत्साह के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जैसा राशि बहन जी कह रहे थे, तपस्या ही सचमुच आधार है। बाबा ने 14 वर्ष तपस्या कराई, मजबूत बनाया हमें। वो 14 वर्ष नहीं लेकिन 4 दिन मिले हैं, क्यों ना उस तपस्या का सुंदर अनुभव कर लें, और ऐसी भट्टी हो, यादगार भट्टी, कि फिर किसी भट्टी की दरकार या आवश्यकता न रह जाए, ऐसा सुंदर परिवर्तन हम सब जरूर करेंगे। तो चलें एक सुंदर दीप प्रज्वलन की विधि से अपनी भट्टी का विधिवत हम उद्घाटन करते हैं। हमारी सुंदर परंपरा जो इस बात का प्रतीक है कि हम प्यारे बाप दादा के आह्वान के साथ, उनकी याद के साथ अपनी सुंदर शुरुआत करते हैं। तो हम प्यारे बाबा का भी भट्टी में आह्वान करेंगे और सुंदर आत्मदीप भी प्रज्वलित करने का संकल्प लेंगे। अनुरोध करता हूँ मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ जनों से कि वो सामने आएं, और टीचर्स बहनें जो बैठी हैं उन्हें भी अनुरोध करूँगा कि वो भी मंच पर आएंगे अपने मास्क के साथ और दीदी के साथ दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। और आप सब भी अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर इस दीप प्रज्वलन में शरीक होंगे। ठीक है, अपना मोबाइल आज आप यूज कर सकते हैं, कल से यूज नहीं करना है। मोबाइल निकाल लें, उसका टॉर्च ऑन कर लें और उसे ऊपर करें। तो इस दीप प्रज्वलन में हम सभी भी अपने सुंदर आत्मदीप के प्रतीक स्वरूप शरीक होंगे। सभी टीचर्स बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि आएंगे मंच पर और इस दीप प्रज्वलन की सुंदर विधि में शामिल होंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
दीप प्रज्वलन की सुंदर विधि, हम सब ने ये संकल्प लिया कि दीपराज बाबा के अंग संग रहेंगे और साथ ही साथ अपने आत्मदीप को सदैव प्रज्वलित करके रखेंगे, औरों को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। तो आत्मदीप सदा जलते रहें, जगमगाते रहें, हम बाबा को और बाबा हमें याद आते रहें। जब तक जीवन है, दुआ है हमारी कि आप यूं ही ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाते रहें, आप यूं ही ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैलाते रहें। और चलिए अब इस सुंदर दीप प्रज्वलन की विधि के पश्चात हम उनकी ओर चलते हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार से, हृदय में ममता के भाव भरे हुए, हमारे कल्याण के भाव को अपने हृदय में संजोए हुए हमें यहाँ आमंत्रित किया है। आप सबको यहाँ देखकर जिनके हृदय में सबसे ज्यादा खुशी है, प्रसन्नता है और अपनत्व है, जिनके अंदर ये भाव है कि आप सब बाबा के राइट हैंड बन जाएं, बाप समान बन जाएं, सभी विघ्नों से मुक्त निर्विघ्न बन जाएं, तो आप सभी जो अलग अलग स्थानों से विघ्न विनाशक गणेश यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे महागौरी ने आप सबको अपने शिव पिता से मिलने के लिए आमंत्रित किया है, तो एक बार जोरदार तालियां उस महागौरी के लिए जिन्होंने हमारे जैसे न जाने कितने गणेशों को अलौकिक जन्म दिया है। भक्ति में भी कहते हैं कि महागौरी ने बहुत गहन तप किया और पश्चात शिव ने उन पर गंगा जल छिड़का और वो गोरी हो गए, और साथ ही अपने आप को अमृत से भरपूर करके सबको अमृत पान कराया। तो बाबा ने भी हमारी आदरणीय प्यारी दीदी के ऊपर गंगा जल छिड़का, उस गंगा जल को स्वयं में समाकर दीदी ने देश विदेश सभी आत्माओं का इतना सुंदर कल्याण किया है कि सचमुच जैसी राशि बहन भी कह रही थी, आदर्श हैं दीदी हम सबके सामने। जीवन कैसा हो, भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे समाना है, उस सबको दीदी अपने जीवन से सिखाती हैं। दीदी जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, एशिया पैसिफिक रीजन की आप डायरेक्टर, ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर, आईटी विंग का भी आप संचालन करती हैं, और इतना कार्य होते हुए भी मैंने हमेशा दीदी को हल्का पाया है और साथ ही इजीली और ऑलवेज अवेलेबल पाया है। ये कितनी बड़ी क्वालिटी है। तो ऐसी दिव्यता की मूर्ति हम सब की आदरणीय प्यारी दीदी से अब मैं अनुरोध करूंगा। उससे पूर्व सुमन बहन से अनुरोध करूंगा कि कौन कौन सा ग्रुप आया हुआ है दीदी को अवगत कराएं, पश्चात हम दीदी के आशीर्वचन, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं अपनी इस भट्टी के लिए प्राप्त करेंगे। सुमन बहन,
दिल्ली चज्जूपुर सेंटर के कनेक्शन से जो भी भाई बहने आए हैं वो उठ खड़े होंगे। करीब 130 है बेंजी, 145 भाई बहने दिल्ली चज्जूपुर कनेक्शन से आए हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, बैठे। दिल्ली ईस्ट पटेल नगर सेंटर के कनेक्शन से जो भी भाई बहने आए हैं आप भी 115 के करीब है ना रजिस्ट्री बहन, 125। आप सभी का भी ज्ञान सरोवर में स्वागत है, बैठिए। ये दो ग्रुप बड़े हैं और बाकी सब छोटे छोटे ग्रुप से, कहीं सेंटर से चार लोग, तीन पांच ऐसे लोग आए हुए हैं, वो सब मिलाकर के करीब 50 लोग हैं। वो सभी भाई बहने उठेंगे जो दिल्ली चज्जूपुर और दिल्ली ईस्ट पटेल नगर के अलावा जो आए हुए हैं। आप सभी का भी स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। भट्टी में आए हुए भाई बहने, तीन प्रकार का मौन तो रखेंगे, साथ साथ लक्ष्य रखना है कि सारा दिन हम अव्यक्त फरिश्ता बनकर घूमते रहें। जब बैठे हैं उस समय विशेष पावरफुल याद हो, जो 10 साल से पुराने हैं जरा हाथ उठाना, तो आप लोगों को तो विशेष जब भी बैठते हो लक्ष्य रखना है हम बिंदी बनकर बिंदी पाप की याद में मगन हो जाए, लव में लीन हो जाए। विशेष अमृत वेला, बाबा से जो शक्ति लेनी है वो लक्ष्य लेकर बैठना, क्योंकि जब तक शक्तियां नहीं हैं तब तक विघ्न विनाश नहीं कर सकते। बाबा के बने विघ्न तो आते रहेंगे, कर्मों का हिसाब किताब तो चुक तो करना है, लास्ट जन्म में बीमारियां आएंगी और धन की
तकलीफ हो सकती है क्योंकि कोरोना काल में कईयों की नौकरी छूट गई, कईयों के धंधे मंद हो गए, तो धन की भी कुछ तकलीफ हो सकती है और संबंध में गड़बड़ हो सकती है, लौकिक चाहे अलौकिक संबंध में। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाबा से पूरी शक्ति लेनी है ताकि पास्ट के विकर्म भी खत्म हो जाए और भविष्य की हम कमाई भी करके जाए, क्योंकि सेवा के लिए हमें अपने को एग्जाम्पल बनाना है और जितनी सेवा करेंगे हम अपना भाग्य बनाएंगे। तो इसलिए अपने आप को शक्तिमान बनाना है और अपने जो भी पुराने संस्कार हैं उसको बदलने हैं, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना है कि हमारे पुराने कोई भी संस्कार ना रहे। उसकी आहुति मधुबन यज्ञ में डाल के जाना, संस्कारों का, पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करके जाना, साथ में नहीं ले जाना। और बाबा से जिन संबंध का हमने अनुभव नहीं किया है, इस भट्टी में चांस है उस संबंध का हम अनुभव करें। क्योंकि बाबा को कहते हैं माता पिता बंधु सखा साजन टीचर गुरु और बच्चा, ये सब संबंध का अनुभव करना। जितना बाबा से हम संबंध जोड़ेंगे, उनसे सपोर्ट लेंगे, तो दुनियावी संबंधियों का हमें सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगाव मुक्त बंधन मुक्त बनना है। और अंत में जो हमारा पेपर होगा, बाबा ने पेपर बता दिया, टाइम नहीं बताया कब पेपर होगा। दुनिया में क्या है, पहले से तारीख आ जाती है कि फाइनल एग्जाम फलानी तारीख को होंगी, पेपर नहीं बताते हैं। और हमारी स्टडी ऐसी है, हमें पेपर का मालूम है कि नष्टो मोहा श्रुति लब्धा रहना, क्योंकि जहां मोह होगा, जहां आकर्षण होगा, तो क्या होगा, अंत में उनकी याद आएंगे, वो खींचेंगे। क्योंकि दुनिया में हमने देखा है लोग मरते हैं तो कहेंगे वो बच्चे को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ, पोते को बुलाओ, दोते को बुलाओ, इसको ये देना है, उसको वो देना है, सब याद करते हैं। तो हमें ये देखना है कि अंत में उनकी याद भी ना आए, बुलाने की बात तो छोड़ो पर उनकी याद भी ना आए। तो जब अभी से ये अभ्यास करेंगे नष्ट मोहा, तो अंत में ये काम आएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना, वो लक्ष्य के अनुसार हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जो विकार है उसके ऑपोजिट शक्ति लेनी है। गुस्सा है, सहनशीलता धारण करनी है। लोभ है, अविनाशी खजाना देखकर संतुष्ट रहना है। मोह है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ा, बाबा एक हमारा सहारा। और जितना स्वमान में रहेंगे ईर्ष्या नहीं रहेंगी, वैर नहीं रहेगा, जितना प्यार होगा। तो इसलिए रूहानियत में सदा रहना है, चाहे यहाँ चाहे अपने घर में। लौकिक को भी अलौकिक बनाना, हर एक के साथ अलौकिक संबंध रहे। और जितनी बाबा से शक्ति ले सके यहाँ चांस है। जैसे आपने सुना, उन्होंने तो शुरू में 14 साल की भट्टी की, कुछ नहीं था उन्हों को, धंधा नौकरी नहीं। जो ड्यूटी होती थी एक ड्यूटी रहती थी, परंतु कोई भी लौकिक के संबंध में नहीं। और अभी आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और कोई कोई नौकरी धंधा भी करते होंगे, तो नौकरी धंधा करते गृहस्थ व्यवहार में रहते अज्ञानियों के साथ संबंध संपर्क में आते लक्ष्य रहे, हमें कमल फूल समान पवित्र बनना है और उसके लिए शक्ति यहाँ धारण करनी है, ताकि वहाँ भी हम जो करना है जैसे रहना है हम रह सके। तो आए हैं पूरा लाभ लेना। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी ने हम सबको अगले 3-4 दिनों में जो करना है, जो अनुभूति करनी है, उसकी सुंदर बातें हमारी सम्मुख रखी हैं। सब डायरी पेन लेकर के जरूर आएंगे, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। इतनी सुंदर बातें जो हम सुन रहे हैं, हर सेशन में सुनेंगे, उन्हें जरूर हम नोट करते चलेंगे। तो दीदी ने कहा यहाँ सब कुछ स्वाहा करके, हाँ, संपन्न संपूर्ण अपने आप को बना करके हमें जाना है। तो ये संकल्प हम जरूर रखेंगे सुंदर अनुभूतियां करने का, क्योंकि दीदी ट्रिब्यूनल में बैठने वाली हैं। तो आप सब अभी बैठे हैं यहाँ, तो चाहेंगे ना कि दीदी के पास जब जाएं ट्रिब्यूनल में तो मुस्कुराते हुए आगे निकल जाएं, ना तो दीदी फिर वहाँ रोक लेंगे, दीदी वहाँ फिर आपको तो हम सबका भाग्य है कि ऐसी विभूति ना जो बाबा के साथ बैठने वाली हैं ट्रिब्यूनल में हमारे सम्मुख हैं। इसीलिए दीदी जो जो शिक्षा दे रही हैं सबको हमें अपने जीवन में उतारना है। उतारेंगे ना एक हाथ की ताली से, दीदी को अश्योर करें दीदी ये सभी करेंगे ऐसा। और साथ ही बाबा कहा करते थे कि डॉक्टर निर्मला जैसी यदि मुझे 21 कुमारियां मिल जाए तो मैं संसार को स्वर्ग बना दूं। तो तालियां तो बजाएं हमारी ऐसी दीदी के लिए। तो हम सब भी ऐसी दीदी को अपने सम्मुख देखते हुए ऐसा ही बनने का श्रेष्ठ संकल्प लेंगे। और ये भी हमारा भाग्य रहेगा कि दीदी रोज हमें मुरली सुनाएंगे है? और रोज शाम को बहुत पावरफुल योग भी कराएंगे। तो ये बहुत बहुत हमारा भाग्य है कि ऐसी महान विभूतियों के अंग संग रहते हुए हमें आगे बढ़ने का, खुद को सजाने संवारने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। अब दीदी ने हम सबके बीच से विदाई ली। अब मैं चाहूंगा कि अगले 3 दिन जो जो चीजें हमें करनी हैं, जैसे रहना है, जो हमारी दिनचर्या आपको दी गई है, शेड्यूल दिया गया है, कैसे उसका पालन करना है और किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उसकी जानकारी हमारे आदरणीय संजय भाई जी आप सबके सम्मुख रखेंगे। संजय भाई जी 1990 में बाबा के यज्ञ में आए और 92 में आपने समर्पित होकर अपनी सेवाएं ज्ञान सरोवर में देना प्रारंभ किया। ज्ञान सरोवर पहले ऐसा नहीं था जैसा आज आप देख रहे हैं, ठीक खांडव प्रस्थ की तरह था। इसे इंद्रप्रस्थ बनाने में जिन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका है उसमें संजय भाई जी भी एक हैं। संजय भाई जी ज्ञान योग में बहुत गहन रुचि रखते हैं, इसीलिए बाबा ने स्पार्क जो हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर है उसके हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर का ताज आपके सिर पर रखा है। तो मैं अनुरोध करूंगा संजय भाई जी हम सबके सम्मुख आने वाले 3 दिनों की सूचनाएं और शेड्यूल हम सबके सामने ब्रीफ करेंगे। संजय भाई जी
ओम शांति। आप सबके आते ही मौसम भी बहुत खुशनुमा हो गया है। इस वर्ष वर्षा हो नहीं रही थी लेकिन जैसे आप सब आए वर्षा भी होने लगी और यहाँ का जो वातावरण है वो अपने आप में साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप सब दिल्ली से आए हैं, मैं समझता हूँ दिल्ली में गर्मी बहुत होगी, ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को? साधना के लिए वातावरण का भी सहयोगी होना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो वातावरण जो साधना के लिए चाहिए वो यहाँ है। तो अगले 3-4 दिनों में वातावरण के सहयोग से और जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहने आपको देंगे योग के रूप में, ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में, उससे आप अपनी झोली भरेंगे, अच्छी साधना करेंगे ताकि पूरा वर्ष आपका इससे काम चलता रहे, पूरे वर्ष के लिए आप सब एनर्जाइज हो जाएं, मन शांत रहे, तन स्वस्थ रहे और सारी विघ्न बाधाएं आपसे दूर रहें। यही लक्ष्य है हमारे ज्ञान योग का और इसी लक्ष्य से हम सब साधना करते हैं, इसी लक्ष्य से हम सब आए भी हैं इतनी दूर से, बहुत पैसा खर्च करके, समय निकाल करके, अपने कारोबार को मैनेज करके। तो 3 दिनों तक बहुत अच्छी तरह सारी बातों को भुला करके, अपने आप को पूरे संसार से डिसकनेक्ट करके, जैसा कि सुमन बहन जी शुरू में कह रही थी, पूरी तरह से मन को शांत करके यहाँ बैठेंगे और भट्टी करेंगे। आप सबको दिनचर्या का जो शेड्यूल है वो जरूर मिला होगा, कोई ऐसा भी है जिसको शेड्यूल अभी तक नहीं मिला है? अगर न मिला हो तो आप सब रिसेप्शन से ले लेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 3 दिन आपकी कंप्लीट भट्टी रहेगी और तीनों दिनों का पैटर्न जो होगा वो एक जैसा ही होगा। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी जो दिनचर्या बनाई गई है उसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप सब बाबा के घर में आए हैं तो आ करके यहाँ के यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के जो वाइब्रेशंस है, साधना की जो शक्ति कण-कण में भरी हुई है, आप उसको भी महसूस करें, अपने अंदर भरें। खाली समय में अलग अलग जगहों पर कई बाबा के कमरे बने हुए हैं और पूरा ये कॉम्प्लेक्स ही अपने आप में एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। तो कहीं भी बैठ करके शांत एकांत स्थान में आप अपने आप को भरें यहाँ के जो रूहानी खुशबू है उससे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपकी दिनचर्या है वो बहुत टाइट नहीं बनाई गई है। दूसरा, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि समय अनुसार अब आपको योग का समय ज्यादा मिले और ज्ञान कम, क्योंकि ज्ञान की कमी अब किसी के पास नहीं है। हमारे पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, YouTube है, WhatsApp है, Facebook है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान तो बहुत मिलता है लेकिन हमारे जीवन की जो लैकिंग पॉइंट है वो ये है कि हम पुरुषार्थ के लिए यानी योग के लिए समय कम दे पाते हैं, तो 3 दिनों की दिनचर्या में योग के स्लॉट्स ज्यादा रखे गए हैं ताकि आप सब योग की गहराई में पहुंचे। योग की गहराई में जाने के लिए योग की निरंतरता बहुत जरूरी है, उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। आपकी दिनचर्या 3 बजे प्रारंभ होगी, वैसे तो ऑफिशियली 3:30 बजे गीत बजता है उठने का, लेकिन 3 बजे आप सब उठेंगे, मुंह हाथ धुलाई करके, बाबा को याद करके, बाबा को गुड मॉर्निंग करके, अगर कुछ आप सबके पास अव्यक्त वाणी हो, साकार मुरली हो, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसे जरूर पढ़ेंगे ताकि 5-6 घंटे जो हम सोए हैं और हमारा जो ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो जाए, और फिर उसके बाद 3:30 बजे तक आप सब इसी हॉल में योग के लिए पहुंच जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, सीधा सो करके उठते हैं, मुंह धुलाई किया आ गए तो नींद की असर रहती है, पर हम जानते हैं कि ब्राह्मण दिनचर्या में अमृत बेला हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी मुरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अमृत बेला का समय भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा समय है जब हम बाबा से जो चाहें वो ले सकते हैं। अगर मन हमारा एकाग्र है, मन शांत है, तो जो चाहे ले सकते हैं। तो थोड़ा सा एक पैरा कुछ पढ़ करके 3:30 बजे तक आप यहाँ आएंगे, 3:30 से 4:45 बजे तक सामूहिक योग चलेगा अमृत बेले का। आपके सारे ही कार्यक्रम इसी हॉल में होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वापस आप सब यहाँ से जाएंगे स्नान आदि के लिए, 6 से 6:30 फिर वापस यहाँ इसी हॉल में म्यूजिकल एक्सरसाइज होगी। घर में आप सब होते हैं तो सारा दिन भाग दौड़ रहता है, तो एक्सरसाइज हो जाती है, लोग अपने अपने ढंग से भी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ आपके पास कुछ ऐसा है नहीं। 3 दिन कंप्लीट आपको मौन साधना करनी है, तो सारा दिन बैठ बैठ के भी शरीर भारी हो जाता है। तो अगर सुबह में थोड़ा सा आधा घंटा हम कुछ लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सारे दिन के लिए स्फूर्ति बनी रहती है। बहुत सुंदर हमारे साउंड डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी म्यूजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बाबा के गीत, छोटे छोटे म्यूजिक, उसके द्वारा बहुत हल्के फुल्के एक्सरसाइज वो कराते हैं, बहुत इंटरटेनिंग भी होता है, आपको बहुत मजा भी आएगा। वैसे तो ये एक्सरसाइज बाहर जो सामने प्लाजा है खुला हुआ उसमें होता है जब मौसम साफ होता है तो, लेकिन चूंकि बारिश है इसलिए एक्सरसाइज भी इसी हॉल में होगी। जब मौसम खुला होगा तो वहां होगा, उस अनुसार आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ही एक्सरसाइज होगी 6 से 6:30 बजे तक। 6:30 से 7 बजे तक योग होगा, 7:30 से 8 बजे तक मुरली क्लास, उसके बाद 8 से 8:20 तक मुरली रिवीजन होगा। फिर आप सब नाश्ते पर जाएंगे वापस, फिर 9:30 बजे यहाँ आना है, 9:30 से 10 बजे तक गाइडेड मेडिटेशन, कोई ना कोई हमारा कोई एक भाई या बहन आपको बहुत सुंदर कमेंट्री द्वारा योग कराएंगे। उसके बाद 10 से 11:15 बजे तक एक क्लास, 11:30 से 12:30 बजे तक फिर एक कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी होगी, बीच में 10-15 मिनट के लिए ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक कोई ना कोई एक एक्टिविटी होगी। उसके बाद 12:30 बजे आप फ्री हो जाएंगे, आप सब भोजन पर जाएंगे, 1 से 4 बजे तक लंच और रेस्ट का समय रहेगा। मैं समझता हूँ इतना समय काफी है आप सबके लिए, तो आप सब विश्राम करके पुनः चाय वगैरह पी करके 4:30 बजे इसी हॉल में आएंगे, 4:30 से 5 बजे तक फिर से योग होगा, फिर 5 to 6:15 एक क्लास होगा, सुबह में एक क्लास, शाम को एक क्लास, सारे दिन में दो ही क्लास रखे गए हैं और बाकी अलग अलग ढंग से कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी और योग कराए जाएंगे। फिर 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, फिर 6:30 से 7:30 बजे तक नमो शाम का योग होगा, 7:30 से 8 बजे तक ये जो आधे घंटे का स्लॉट है उसमें कोई ना कोई एक भाई या बहन आपसे मिलेंगे, उसमें कुछ अपनी अनुभव युक्त बातें सुनाएंगे और फिर आपकी दिनचर्या यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आप सब फिर डिनर पर जाएंगे, डिनर करके 9 से 9:30 यहाँ जो भी बाबा के कमरे बने हुए हैं वापस यहाँ नहीं आना है, यहाँ की दिनचर्या आपकी 8 बजे पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आप सब बाबा के कमरे में गुड नाइट मेडिटेशन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि अब पूरा हो गया तो हम कमरे में ही गुड नाइट मेडिटेशन करें, चलो बारिश है कहाँ जाएंगे, नहीं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो हमें अपनी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये भी हम सबको सीखना है। तो 9 से 9:30 हम बाबा के कमरे में गुड नाइट मेडिटेशन करेंगे और हो सके तो 10 से पहले पहले सो जाएंगे, क्योंकि अगर सोने में आप विलंब करते हैं तो फिर उठने में भी विलंब होगा। वातावरण बहुत सुहाना है, कई बार बारिश रुक जाती है, फॉग जब आता है तो रात की लाइटिंग में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है या सूक्ष्म वतन की तरह ये ज्ञान सरोवर दिखता है। तो कई लोग देर तक घूमते रहते हैं इधर उधर, तो ऐसा ना करें, आप 10 बजे से पहले पहले सो जाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और खास गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, ये एक अच्छा अवसर है, आप ऐसे ओकेजन पर आए हैं तो आपकी जो भट्टी है उसी अनुसार रखी गई है। इसका नाम भी क्या रखा है, सिद्धि स्वरूप, सिद्धि स्वरूप, और आगे क्या है, मौन भट्टी। तो मौन भी रहना है, मौन के बारे में बहुत विस्तार से सुमन बहन जी ने आप सबको बताया, तो मौन में रहना है। और हम एक दिन लास्ट दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव भी सेलिब्रेट करेंगे और वो भी रूहानी ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। बाबा का घर, इसकी विशेषता यही है कि हम सारे त्योहार मनाते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी त्योहार यहाँ ना मनाए, सभी त्योहार हम यहाँ मनाते हैं, लेकिन दुनिया में और हमारे में थोड़ा फर्क है। हमारे त्योहार मनाने का जो तरीका है वो दुनिया से बिल्कुल अलग, निराला और यूनिक है, यही विशेषता है। तो देखते हैं सुमन बहन जी ने आप सबके लिए कैसी तैयारी कर रखी है, वो हम उस दिन ही देखेंगे। तो ये थी दिनचर्या तीनों दिनों के लिए, और इस दिनचर्या को आप बहुत ही तत्परता से, पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि